दानियल की पुस्तक संख्या 171।
भू राजनीतिक शतरंज, वेटिकन, साम्यवाद और विश्व पर वर्चस्व की खोज।
ये पुस्तक The Keys of This Blood, The Struggle for World Dominion Between Pope John Paul II, Mikhail Gorbachev and the Capitalist West, Malachi Martin द्वारा लिखी गई थी और ये पहली बार 1990 में प्रकाशित हुई थी। मार्टिन 2000 वुमेन फॉर द 20th सेंचुरी के उत्तरार्ध में वैश्विक राजनीति और कूटनीति में एक रूपांतरणकारी व्यक्तित्व के रूप में पोप जॉन पॉल II की भूमिका का परीक्षण करते हैं। वे पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन में पोप की भूमिका पर चर्चा करते हैं। ये पुस्तक उन गतिशील टाउन्स पर एक कैथोलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत तो कहते जिनके परिणाम स्व 1989 में अर्थात अंत के समय दानियल 11 की 40वें वापद की पूर्ति हुई। मार्टिन मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में सोवियत संघ की आंतरिक गतिशीलता का विश्लेषण करते हैं, विशेष रूप से गोर्बाचेव की ग्लासनास्त, खुलापन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन नीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। वो सोवियत संघ के सामने मौजूद चुनौतियों और साम्यवादी व्यवस्था में सुधार के लिए गोर्बाचेव के प्रयासों पर चर्चा करते हैं। वो सोवियत संघ दक्षिण का राजा ड्रैगन, कैथोलिक चर्च उत्तर का राजा पशु और जिसे वो पूंजीवादी पश्चिम कहते हैं उत्तर के राजा की प्रॉक्सी सेना झूठा नबी के बीच भू राजनीतिक तनाव और शक्ति संघर्षों का अन्वेषण करते हैं। वो शीत युद्ध काल के वैचारिक संघर्ष, जासूसी और गुप्त अभियानों पर चर्चा करते हैं और विश्व के भविष्य को आकार देने के लिए विभिन्न पक्षों के प्रयासों की पड़ताल करते हैं। मार्टिन वैश्विक राजनीति और कूटनीति में शक्ति के रूप में कैथोलिक धर्म के महत्व पर जोर देता है। वो तर्क देता है कि पोप जॉर्ज पॉल द्वितीय के नेतृत्व में कैथोलिक चर्च ने इस अवधि में इतिहास की दिशा को आकार देने और शीत युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वो जॉन पॉल के प्रभाव को पुर्तगाल के फातिमा में मरियम के प्रकट होने की घटनाओं के संदर्भ में रखता है और वैश्विक घटनाओं पर फातिमा के प्रभाव तथा इतिहास की दिशा को आकार देने में कैथोलिक चर्च की भूमिका की पहचान करता है। मार्टिन सुझाव देता है कि फातिमा की घटनाओं के महत्वपूर्ण भविष्य सूचक और भू राजनीतिक निहितार्थ है, विशेषकर शीत युद्ध के दौर के संदर्भ में। मार्टिन फातिमा के तीन रहस्यों की पड़ताल करते हैं जिन्हें कथित तौर पर 1917 में फातिमा में तीन युवा चरवाहे बच्चों को कुंवारी मरियम ने प्रकट किया था। वे सुझाव देते हैं कि तीसरा रहस्य, जिसे प्रारंभ में वेटिकन ने गोपनीय रखा और 2000 में ही उजागर किया, कैथोलिक चर्च और विश्व के भविष्य के बारे में प्रलयकारी चेतावनियां समेटे हुए था। मार्टिन तर्क देते हैं कि फातिमा की घटनाओं, जिनमें दर्शन और कुंवारी मरियम द्वारा दिए गए संदेश शामिल थे, का वैश्विक राजनीति और शीत युद्ध काल के दौरान साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच संघर्ष पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। मार्टिन फातिमा की भविष्यवाणियों की पूर्ति में पोप जॉन पॉल द्वितीय की भूमिका को एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में रेखांकित करते हैं। वे सुझाव देते हैं कि जॉन पॉल द्वितीय ने स्वयं को फातिमा के तीसरे रहस्य में उल्लिखित सफ़ेद वस्त्रधारी बिशप के रूप में देखा और ये कि उन्होंने अपने पोपाई कार्यकाल को बुराई की शक्तियों का सामना करने तथा कैथोलिक चर्च और व्यापक समाज में आध्यात्मिक नवीनीकरण को बढ़ावा देने के एक मिशन के रूप में माना। मार्टिन का कहना है कि फातिमा के संदेशों ने आध्यात्मिक युद्ध के महत्व और कैथोलिक चर्च के भीतर तथा बाहर दोनों जगह मौजूद बुराई की शक्तियों का सामना करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वो तर्क देते हैं कि फातिमा की घटनाओं ने आधुनिक दुनिया में मानवता के सामने खड़ी चुनौतियों को समझने और उनका सामना करने के लिए एक आध्यात्मिक और नैतिक ढांचा प्रदान किया। फातिमा के संदेश शैतानी संदेश का प्रतुनद तेत्रियस हुआ यानी मांटर धर्म्स का किस बात के लिए तैयार करते हैं कि वो शैतान को मसीह के रूप में तस्वीर करे, जब वो शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय मसीह का रूप धरता है।
शैतान पृथ्वी पर रहने वालों की धोखा देने के लिए चमत्कार करेगा। आत्मवाद मृतकों का रूप धराकर अपना कार्य करेगा। जो धार्मिक संस्थाएं परमेश्वर की चेतावनी के संदेशों को सुनने से इनकार करेंगी, वे गहरे धोखे में पड़ जाएंगी और संतों को सताने के लिए राजकीय सत्ता के साथ मिल जाएंगी। प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले लोगों को सताने में पापाई सत्ता के साथ एक हो जाएंगी। यही वो शक्ति है जो उत्पीड़न के महान तंत्र का गठन करती है, जो मनुष्यों के विवेक पर आध्यात्मिक तानाशाही थोपेगी।
उसके दो सींग मेमने के समान थे और वो अजगर के समान बोलता था। यद्यपि वे परमेश्वर के मेमने के अनुयायी होने का अंगीकार करते हैं, फिर भी लोग अजगर की आत्मा से भर जाते हैं। वे अपने को दीन और नम्र बताते हैं, पर वे शैतान की आत्मा से बोलते और विधान करते हैं और अपने आचरण से प्रकट करते हैं कि वे जो होने का दावा करते हैं उसके ठीक विपरीत हैं। ये मेमने सदृश शक्ति उन लोगों पर युद्ध करने में अजगर के साथ मिल जाती है जो परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं और यीशु मसीह की गवाही रखते हैं, और शैतान इस संसार के देवता के रूप में प्रोटेस्टेंटों और पोपवादियों के साथ मिलकर उनके साथ एकतान होकर कार्य करता है। मनुष्यों पर ऐसे हुक्म चलाता है मानो वे उसके राज्य की प्रजा हों, जिन्हें वो अपनी इच्छा के अनुसार बरत सके, शासित कर सके और नियंत्रित कर सके।
यदि मनुष्य परम ईश्वर की आज्ञाओं को पैरों तले रौंदने पर सहमत नहीं होंगे तो अजगर की आत्मा प्रकट हो जाती है, उन्हें कैद किया जाता है, परिषदों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उन पर जुर्माना लगाया जाता है। वह छोटे और बड़े, धनी और निर्धन, स्वतंत्र और दास, सबके दाहिने हाथ पर या उनके माथे पर एक चिन्ह लगवा देता है। प्रकाशित वाक्य 13:16। उसके पास पशु की मूर्ति में प्राण फूंकने की शक्ति थी, ताकि पशु की मूर्ति बोले भी और जितने लोग पशु की मूर्ति की उपासना न करें उन्हें मरवा दे। 15। इस प्रकार शैतान यहोवा के विशेषाधिकारों को हड़प लेता है। पाप का मनुष्य परमेश्वर के आसन पर बैठता है, अपने आप को परमेश्वर घोषित करता है और परमेश्वर से ऊपर होकर आचरण करता है। माइनोस्क्रिप्ट रिलीजेस खंड 16:16।
मसीही विरोधी रोम के पोप और शैतान दोनों का प्रतीक है, क्योंकि रोम का पोप शैतान का पृथ्वी पर प्रतिनिधि है। इस प्रकार शैतान यहोवा के विशेषाधिकारों पर कब्जा कर लेता है। अधर्म का मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन पर बैठता है, अपने आप को परमेश्वर घोषित करता है और परमेश्वर से ऊपर होकर आचरण करता है। शैतान का इरादा है कि जब वह नियंत्रण कर लेगा तो वह संसार को इस प्रकार वश में करेगा कि वह मनुष्यों पर यूं हुक्म चलाएगा मानो वे उसके राज्य के प्रजाजन हों, जिन्हें वो जैसे चाहे वैसे बढ़ते शासित करे और नियंत्रित करे। धार्मिक सिंहासन से शासन करने के लिए उसने कैथोलिक कलिया की स्थापना की, और राजनीतिक सिंहासन से शासन करने के लिए उसने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की।
मूर्ति पूजा और ईसाई धर्म के बीच इस समझौते का परिणाम पहले से बताई गई भविष्यवाणी के अनुसार पाप का मनुष्य का विकास था, जो परमेश्वर का विरोध करता है और अपने आप को परमेश्वर से ऊपर उठाता है। झूठे धर्म की वो विशाल व्यवस्था शैतान की शक्ति की एक उत्कृष्ट कृति है, उसके प्रयासों का स्मारक कि वो अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर शासन करने के लिए स्वयं को सिंहासन पर बैठाए। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 50।
फातिमा का चमत्कार और उसकी शैतानी भविष्यवाणी वही साधन है जिनका उपयोग शैतान ने एक ऐसा भविष्य सूचक परिदृश्य तैयार करने के लिए किया है जो उसके प्रकट होने और मसीही का रूप धारण करने पर कैथोलिक धर्म को अपनी कलीसिया को शीघ्र ही उसके नियंत्रण में सौंप देने की अनुमति देता है। मसीही का उसका रूप धारण करना निकट आने वाले रविवार के कानून से आरंभ होता है, जो दानियल अध्याय 11 के पद 16, 22, 31 और 41 में दर्शाया गया है।
परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए पोपतंत्र की संस्था को प्रवर्तित करने वाली आज्ञप्ति के द्वारा हमारा राष्ट्र स्वयं को धर्म से पूर्णतः विच्छिन्न कर लेगा। जब प्रोटेस्टेंटवाद उस खाई के पार अपना हाथ बढ़ाकर रोमी सत्ता का हाथ थामेगा, जब वो उस अथाह गर्त के ऊपर से पहुंचकर आत्मवाद के साथ हाथ मिलाएगा, जब इस त्रिविध संघ के प्रभाव के अधीन हमारा देश एक प्रोटेस्टेंट और गणतांत्रिक शासन के रूप में अपने संविधान के प्रत्येक सिद्धांत का परित्याग कर देगा और पोपीय मिथ्याओं तथा भ्रमों के प्रसार के लिए प्रावधान करेगा, तब हम जान सकेंगे कि शैतान के अद्भुत कार्य करने का समय आ पहुंचा है और अंत निकट है। टेस्टिमोनीज वॉल्यूम 5, 451।
संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून के समय शैतान के अद्भुत कार्य करने का समय आ गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 11 में संयुक्त राज्य अमेरिका अजगर की तरह बोलता है, और फिर पद 13 में, जो बस ये दर्शाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बोलता है, यानी रविवार का कानून पारित करके। तो क्या होता है? शैतान स्वर्ग से आग नीचे बुलाता हुआ प्रतीत होता है।
परमेश्वर के सेवक, जिनके मुख पवित्र समर्पण से आलोकित और दीप्त होंगे, स्वर्ग का संदेश प्रचार करने के लिए स्थान स्थान पर शीघ्रता से जाएंगे। समस्त पृथ्वी पर हजारों कंठों से ये चेतावनी दी जाएगी, चमत्कार किए जाएंगे, रोगी चंगे किए जाएंगे, और चिन्ह व आश्चर्य कर्म विश्वासियों का साथ देंगे। शैतान भी कार्य करेगा झूठे आश्चर्य कर्मों के साथ, यहाँ तक कि मनुष्यों के देखते देखते आकाश से आग उतार देगा। प्रकाशित वाक्य 13:13। इस प्रकार पृथ्वी के निवासियों को अपना पक्ष लेने के लिए लाया जाएगा। महान विवाद 751-712।
फातिमा के संदेशों की पुष्टि एक ऐसे चमत्कार द्वारा हुई जिसकी साक्षी उस नास्तिक सरकारी समाचार पत्रों ने दी, जो इस उद्देश्य से उस घटना में उपस्थित हुए थे, कि तथाकथित कुवारी मरियम के मई से लेकर 13 अक्टूबर 1917 के चमत्कार तक प्रत्येक महीने की 13वीं तिथि को उन तीन बच्चों के पास आने के विषय में किए गए दावों का खंडन कर सकें। चमत्कार के समय फातिमा में उपस्थित प्रत्येक नास्तिक समाचार संगठन ने उस घटना की पुष्टि की। वो एक वास्तविक चमत्कार था शैतान का, जैसा कि मलाची मार्टिन ने अपनी पुस्तक में बताया है। पोप जॉन पॉल फातिमा की माता मरियम के प्रति अपनी भक्ति से मार्गदर्शित थे। फातिमा की गुप्त भविष्यवाणी, जो वर्ष 2000 तक प्रकट नहीं की गई थी, निस्संदेह एक शैतानी भविष्यवाणी थी, लेकिन अंत समय में यीशु प्रारंभिक दिनों की पुनरावृत्ति करते हैं। बाइबल की सबसे प्राचीन पुनर्निस्तक, जो मूसा ने सबसे पहले लिखी, अय्यूब की पुस्तक है, और ये बताती है कि अय्यूब, जो 144,000 का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि सारी भविष्यवाणियां अंत समय में सबसे परिपूर्ण रूप से पूरी होती हैं। अय्यूब की कहानी में अय्यूब की परीक्षा लेने के उद्देश्य से शैतान को उस पर मृत्यु और विनाश लाने की अनुमति दी जाती है। अंत समय में शैतान को जो चमत्कार करने की अनुमति है, वे वास्तविक चमत्कार है, वे शैतानी चमत्कार है, परंतु परमेश्वर ने शैतान को उसका सर्वोच्च कृत्य पूरा करने की अनुमति दी है। उसी उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से उसने शैतान को अय्यूब की परीक्षा लेने की अनुमति दी थी।
बहुत से लोग आध्यात्मिक प्रकटीकरणों का स्पष्टीकरण देने के लिए उन्हें पूरी तरह मीडियम की धोखाधड़ी और हाथ की सफाई का फल ठहराते हैं, परंतु यद्यपि ये सत्य है कि चालबाजी के परिणामों को अक्सर असली प्रकटीकरण बताकर पेश किया गया है, फिर भी अलौकिक शक्ति के उल्लेखनीय प्रदर्शन भी हुए हैं। जिस रहस्यमय खटखटाहट से आधुनिक स्पिरिचुअलिज्म का प्रारंभ हुआ, वो आणविक चालबाजी या धूर्तता का परिणाम नहीं थी, बल्कि दुष्ट स्वर्गदूतों का सीधा कार्य था, जिन्होंने इस प्रकार आत्माओं का नाश करने वाले भ्रमों में से एक अत्यंत सफल भ्रम को प्रवर्तित किया। बहुत से लोग इस विश्वास के कारण फंस जाएंगे कि स्पिरिचुअलिज्म मात्र मानवीय छल कपट है, जब वे ऐसे प्रकटीकरणों से आमने सामने होंगे जिन्हें वे अलौकिक समझे बिना नहीं रह सकते, तब वे धोखा खाएंगे और उन्हें परमेश्वर की महान शक्ति मानकर स्वीकार कर लेंगे। ये लोग शास्त्रों की उस तरहाई को नज़रअंदाज कर देते हैं जो शैतान और उसके प्रतिनिधियों द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में है। फिरौन के जादूगर परमेश्वर के कार्य की नकल शैतानी सहायता से ही कर पाए थे। पॉल उस गवाही देता है कि मसीह के दूसरे आगमन से पहले शैतानी शक्ति के इसी प्रकार के प्रदर्शन होंगे। प्रभु के आने से पहले सारी शक्ति और चिन्हों और झूठे अद्भुत कामों सहित शैतान का काम करना और समस्त अधर्म की छलना के साथ होगा। 2 थिस्सलुनीकियों 2:9-10 और प्रेरित यूहन्ना अंतिम दिनों में प्रकट होने वाली चमत्कार करने की शक्ति का वर्णन करते हुए कहता है, वह बड़े बड़े चमत्कार करता है, यहाँ तक कि मनुष्यों के देखते देखते आकाश से पृथ्वी पर आग तक उतार देता है, और उन चमत्कारों के कारण जिन्हें करने की उसे शक्ति थी, वह पृथ्वी पर रहने वालों को भरमाता है। प्रकाशित वाक्य 13:13-14। यहाँ केवल बनावटी धोखे की बात नहीं की गई है, लोग उन चमत्कारों से धोखा खाते हैं जिन्हें करने की शक्ति शैतान के प्रतिनिधियों के पास है, ना कि उनसे
जिन्हें करने का वे केवल ढोंग करते हैं। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 553।
मलाची मार्टिन की पुस्तक में फातिमा के संदेशों को कलीसिया के भीतर चल रहे एक आंतरिक संघर्ष के संदर्भ में अंतिम दिनों में कैथोलिकवाद की भविष्योक्तिपूर्ण संरचना के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे या तो अच्छे पोप बनाम बुरे पोप या परंपरावादी पोप बनाम उदारवादी पोप के रूप में निरूपित किया जा सकता है। परंपरावादी और मार्टिन की चमत्कार संबंधी व्याख्या के अनुसार अच्छे पोप अपनी समझ को प्रथम वही सेटेली परिषद, जिसे वेटिकन आई भी कहा जाता है, पर आधारित करते हैं, जो 8 दिसंबर 1875 से 20 जुलाई 1870 तक आयोजित हुई। इसे पोप पायस IX ने बुलाया था और इसका मुख्य ध्यान पोपीय अचूकता के सिद्धांत को परिभाषित करने तथा उस समय कैथोलिक कलीसिया के सामने उपस्थित विभिन्न धर्मशास्त्रीय और सिद्धांतगत मुद्दों का समाधान करने पर केंद्रित था। द्वितीय वेटिकन परिषद, जिसे सामान्यतः वेटिकन II कहा जाता है, बहुत बाद में 11 अक्टूबर 1962 से 8 दिसंबर 1965 तक आयोजित हुई। इसे पोप जॉन टीनासोरी ने बुलाया था और जॉन टीनासोरी की मृत्यु के बाद पोप पॉल VI ने इसे जारी रखा। मार्टिन के शब्दों में, कैथोलिक धर्म के अंतिम दिन रोम की कलीसिया की अभ्रांता और प्रधानता, जैसा कि वेटिकन प्रथम परिषद में प्रतिपादित किया गया था, और उस उदारवाद के बीच संघर्ष की ओर संकेत करते हैं, जिसे इस समय वोक पोप फ्रांसिस प्रदर्शित कर रहे हैं और जो वेटिकन द्वितीय परिषद के दस्तावेजों में परिलक्षित है। मार्टिन का सुझाव है कि कलीसिया पर नियंत्रण के इन दो दृष्टिकोणों के बीच के संघर्ष के दौरान तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है और यीशु लौटकर पृथ्वी पर आते हैं, अच्छे पोप को अपना आशीर्वाद देते हैं और कैथोलिक कलीसिया का सिंहासन ग्रहण करते हैं। दानियेल 11:13-15 पदों में 16वें पद के रविवार व्यवस्था से ठीक पहले का इतिहास प्रतिनिधि युद्धों की तीसरी और अंतिम लड़ाई का वर्णन करता है। ये वो लड़ाई है जो 11वें और 12वें पदों में पुतिन की विजय के पश्चात आती है, परंतु उन तीन पदों के मध्य में 14वां पद ये पहचान कराता है कि अंतिम दिनों के इतिहास में कैथोलिकता कब प्रवेश करती है। यशाया के अनुसार बाइबल की भविष्यवाणी के 6 राज्य के प्रतीकात्मक 70 वर्षीय शासनकाल के दौरान रोम की वैश्या भोला बला दी जाती है। पहली बार पृथ्वी पर पोप तंत्र 518 में सिंहासन आरूढ़ हुआ। उसके सिंहासन आरोहण से पहले का मील का पत्थर 533 में जस्टिनियन का फरमान था। जस्टिनियन के फरमान से संबंधित इतिहास ये दर्शाता है कि जस्टिनियन ने अपने राज्य में अशांति पैदा कर रहे धार्मिक विवाद को समाप्त करके अपने राज्य पर नियंत्रण समेकित करने का प्रयास किया। ये विवाद इस बात पर था कि पूर्व में कॉन्स्टेंटिनोपल का चर्च या पश्चिम में रोम का चर्च, इनमें से कौन कथित ईसाई चर्च का प्रमुख है। 13वें पद में संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतिम राष्ट्रपति एक ऐसे विवाद का सामना करेगा जो उसे जस्टिनियन के इतिहास की पुनरावृत्ति करने और ये घोषित करने के लिए बाध्य करेगा कि कैथोलिक चर्च चर्चों का प्रमुख तथा विधर्मियों का सुधारक है, ताकि अपनी शक्ति को समेकित करने के लिए आवश्यक राजनीतिक समर्थन स्थापित किया जा सके। हमें फातिमा की शैतानी भविष्यवाणियों पर कोई भरोसा नहीं रखना चाहिए, परंतु हमें ये देखना आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन में क्या प्रकट किया गया है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पृथ्वी के पशु के दोनों सींग अपनी तीसरी पीढ़ी में प्रवेश कर गए, जो समझौते की पीढ़ी है। रिपब्लिकन सींग ने अपनी वित्तीय प्रणाली विश्व बैंकरों को सौंप दी, जिनकी जड़ें रेड शील्ड के घराने अर्थात रॉथ्सचाइल्ड्स तक जाती हैं और जिनके इल्यूमिनाटी, फ्री मिसेनरी, गुप्त समाजों और जेसुइट आदेश के साथ रहस्यमय संबंध है। सिस्टर व्हाइट इन संस्थाओं के बारे में सीधे चेतावनी देती है। उसी समयावधि में प्रोटेस्टेंट सींग के रूप में लाओदीकियाई एडवेंटिज्म ने अपनी शैक्षिक और धार्मिक संस्थाओं को संसार के शासन के अधीन कर दिया। उसी कालखंड में आधुनिक दक्षिण का राजा अपना इतिहास रूसी क्रांति से शुरू करता है और आधुनिक उत्तर का राजा अपना इतिहास फातिमा के चमत्कार से शुरू करता है, जैसा कि मलाकी मार्टिन अपनी पुस्तक में जोर देकर कहते हैं। अच्छे और बुरे पोप के बीच के आंतरिक संघर्ष से इतर फातिमा के संदेशों ने ये पहचाना कि कैथोलिक धर्म का संघर्ष सामान्यतः नास्तिकता के विरुद्ध है, पर विशेष रूप से रूस की नास्तिकता के विरुद्ध। वो रहस्य जिस पर 1970 में पोप को कार्य करना था, में ये शैतानी वादा निहित था कि यदि पोप एक कॉन्क्लेव बुलाकर रूस को कुवारी मरियम को समर्पित कर दें तो दूसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। इसमें यह भी बताया गया था कि अगर पोप इंकार करते तो रूस अपनी विचारधारा दूर दूर तक फैला देता और तब एक और विश्व युद्ध होता। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस के साम्यवाद के विरुद्ध कैथोलिक वाद का युद्ध भी सम्मिलित था। उस युद्ध में कैथोलिक वाद की प्रतिनिधि सेना नाजी जर्मनी थी। पोपशाही सदा ही प्रतिनिधि सेनाओं का उपयोग करती है। 1933 में कैथोलिक चर्च ने कार्डिनल पाचेल्ली के कार्य के माध्यम से आदोल्फ हिटलर के साथ एक कॉनकॉर्डेट पर हस्ताक्षर किए, जिसने हिटलर को जर्मनी पर नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति दी, और स्वयं हिटलर की गवाही के अनुसार वही अनुबंध कॉनकॉर्डेट था जिसने हिटलर को यहूदी प्रश्न का समाधान करने की अनुमति दी। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी नास्तिक रूस के विरुद्ध पोपशाही की प्रतिनिधि शक्ति थे, और प्रतिनिधि युद्धों की दूसरी लड़ाई में, जो अब यूक्रेन में संपन्न की जा रही है, ये कार्यान्वयन एक और नाजी प्रतिनिधि सेना के द्वारा किया जा रहा है। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
आत्मा की अमरता और रविवार की पवित्रता, इन दो बड़े भ्रमों के माध्यम से शैतान लोगों को अपने धोखे के अधीन कर लेगा। पहला, जहां आत्मवाद की नींव रखता है, वही दूसरा रोम के साथ सहानुभूति का बंधन बनाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोटेस्टेंट सबसे आगे होंगे, जो इस खाई के पार अपने हाथ बढ़ाकर आत्मवाद का हाथ थामेंगे। वे इस गर्त के ऊपर से हाथ बढ़ाकर रोमन सत्ता से हाथ मिलाएंगे, और इस त्रिविध संघ के प्रभाव में ये देश अंतःकरण के अधिकारों को रौंदने में रोम के पदचिह्नों का अनुसरण करेगा। जैसे जैसे आत्मवाद आज के नाम मात्र के मसीही धर्म की अधिक निकट नकल करता है, वैसे वैसे उसमें धोखा देने और फंसाने की शक्ति बढ़ती जाती है। स्वयं शैतान भी आधुनिक व्यवस्था के अनुरूप अपने को बदल लेता है। वो प्रकाश के स्वर्गदूत के रूप में प्रकट होगा। आत्मवाद के माध्यम से चमत्कार किए जाएंगे, बीमार चंगे होंगे और अनेक अविवादनीय आश्चर्य कर्म किए जाएंगे। और क्योंकि आत्माएं बाइबल में विश्वास का दावा करेंगी और कलीसिया की व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान प्रकट करेंगी, इसलिए उनके कार्य को दिव्य शक्ति के प्रकटीकरण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। कथित ईसाइयों और अधर्मियों के बीच का भेद अब मुश्किल से ही पहचाना जाता है। कलीसिया के सदस्य संसार जो प्रेम करता है वही प्रेम करते हैं और उनके साथ मिल जाने को तत्पर हैं। और शैतान ने ठान रखा है कि उन्हें एक ही समूह में मिला दे और इस प्रकार सबको आत्मवाद के दल में खींचकर अपने उद्देश्य को सुदृढ़ करे। पोपवादी जो चमत्कारों को सच्ची कलीसिया का सुनिश्चित चिन्ह बताकर घमंड करते हैं, इस चमत्कार करने वाली शक्ति से आसानी से धोखा खा जाएंगे, और प्रोटेस्टेंट भी सत्य की ढाल को फेंक देने के कारण भ्रमित हो जाएंगे। पोपवादी, प्रोटेस्टेंट और सांसारिक लोग समान रूप से भक्ति का केवल रूप स्वीकार करेंगे, उसकी सामर्थ्य नहीं, और वे इस एकता में संसार के परिवर्तन तथा लंबे समय से प्रतीक्षित सहस्राब्दी के आगमन का एक भव्य आंदोलन देखेंगे। अध्यात्मवाद के माध्यम से शैतान मानव जाति का हितेशी प्रतीत होता है, लोगों की बीमारियां चंगा करता हुआ और ये दावा करता हुआ कि वो धार्मिक आस्था की एक नई और अधिक उच्च प्रणाली प्रस्तुत करता है, परंतु साथ ही वो विनाशकर्ता के रूप में कार्य करता है। उसके प्रलोभन असंख्य लोगों को नाश की ओर ले जा रहे हैं। असंयम बुद्धि को पच्युत कर देता है। इंद्रिय भोग, कलह और रक्तपात उसके बाद आते हैं। शैतान को युद्ध प्रिय है, क्योंकि वो आत्मा की सबसे निकृष्ट वासनाओं को भड़काता है और फिर अपने शिकारों, जो अवगुण और रक्त में डूबे होते हैं, को अनंत काल में बहा ले जाता है। उसका उद्देश्य राष्ट्रों को एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसाना है, क्योंकि इस प्रकार वो लोगों का मन परमेश्वर के दिन में खड़े रहने की तैयारी के कार्य से भटका सकता है। शैतान अप्रस्तुत आत्माओं की अपनी फसल काटने के लिए तत्वों के माध्यम से भी कार्य करता है। उसने प्रकृति की प्रयोगशालाओं के रहस्यों का अध्ययन किया है, और परमेश्वर जितनी अनुमति देता है
उतनी सीमा तक वो तत्वों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करता है। जब उसे अय्यूब को कष्ट देने की अनुमति दी गई तो कितनी शीघ्र भेड़ बकरियां और झुंड, सेवक, घर, बच्चे सब कुछ बहा दिए गए। मानो क्षण भर में ही एक के बाद एक विपत्ति आ गई। विध्वंसक की शक्ति से अपनी सृष्टि की रक्षा करना और उनके चारों ओर सुरक्षा बाड़ लगाना परमेश्वर ही करता है, परंतु मसीही जगत ने यहोवा की व्यवस्था के प्रति तिरस्कार दिखाया है और प्रभु वही करेगा जो उसने घोषित किया है। वह पृथ्वी से अपनी आशीषें हटा लेगा और जो उसके नियम के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं तथा दूसरों को भी वही करने की शिक्षा दे रहे और मजबूर कर रहे हैं, उनसे अपनी रक्षक देखभाल हटा लेगा। जिन्हें परमेश्वर विशेष रूप से संरक्षित नहीं करता, उन सब पर शैतान का नियंत्रण होता है। वो अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ को कृपा और समृद्धि देगा और दूसरों पर विपत्तियां लाएगा तथा लोगों को ये विश्वास दिलाएगा कि उन्हें कष्ट परमेश्वर के हर। महान विवाद 5 से 8 अपानन 3।